قسط نمبر 11 یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ کتاب عنوان اللہ کے سفیر۔ یہ کتاب نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، جسے آپ کے لیے شمسہ غزالہ ریکارڈ کر رہی ہیں، جسے آپ کے لیے محمد اظہر لطیف پیش کر رہی ہیں۔ کتاب اللہ کے سفیر کو خان آصف نے تحریر کیا ہے۔ باغ کے یہ مالک مشہور صوفی بزرگ حضرت سید عبداللہ سومئی کا سلسلہ نصب 13ویں پشت میں سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتا ہے۔ حضرت سید عبداللہ بڑے زاہد و پرہیزگار انسان تھے، ممنوع ایام کے علاوہ ہمیشہ روزہ رکھتے اور ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ حضرت سید عبداللہ سومئی کی ہزاروں کرامات مشہور ہیں۔ شیخ محمد قزوینی کا بیان ہے کہ ایک بار ان کے کچھ دوست اپنا مال لے کر ایک تجارتی قافلے کے ساتھ سمرقند کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ لوگ ایک صحرا سے گزر رہے تھے تو اچانک سینکڑوں مسلح سوار نمودار ہوئے اور انہوں نے تجارتی قافلے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تاجروں نے گھبرا کر حضرت عبداللہ سومئی کو آواز دی، سیدی یہ رہزن و قزاق ہمارے سروں پر آ پہنچے، دعا فرمائیے کہ خدا ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ ابھی صحرا میں ان آوازوں کی گونج باقی تھی کہ دیکھنے والوں نے دیکھا حضرت سید عبداللہ سومئی ان کے درمیان کھڑے مسلح سواروں کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے، ہمارا پروردگار پاک اور بے عیب ہے، اے سواروں ہم سے دور ہو جاؤ۔ حضرت سید عبداللہ کا اتنا فرمانا تھا کہ یکایک تمام گھوڑے بھڑک اٹھے اور پھر اپنے سواروں کو لے کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ سواروں نے بار بار لگامیں کھینچی مگر گھوڑے بھاگتے ہی رہے، یہاں تک کہ وہ دور دراز کے جنگلوں میں روپوش ہو گئے۔ پھر جب یہ تاجر حضرات کامیاب سفر کے بعد جیلان واپس آئے اور انہوں نے اپنے مقامی دوستوں کو یہ واقعہ سنایا تو سب لوگ حیرت زدہ رہ گئے اور بے اختیار پکار اٹھے، واللہ شیخ تو یہی موجود تھے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی جیلان کی حدود سے باہر نہیں گئے۔ حضرت سید عبداللہ سومئی کی دختر کا خاندانی نام فاطمہ تھا، کنیت ام الخیر اور لقب امت الجبار تھا۔ یہ اپنے وقت کی بہت بڑی آبدہ اور زاہدہ تھی اور جس نوجوان سے سیدہ فاطمہ کی شادی ہوئی وہ اپنے عہد کے نامور بزرگ حضرت سید ابو صالح موسیٰ تھے اور انہی عالی مرتبت ماں باپ کی روشن ترین نشانی تھے غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی۔ خدا قادر و مطلق بھی ہے اور بے نیاز بھی، وہ بت پرستوں میں پیغمبر پیدا کرتا ہے اور پیغمبر کی نسل میں منکر و نافرمان اولادیں، یہ اس کی قدرت اور خلاقی کی عجیب مثال ہے۔ ورنہ عام طور پر جب اللہ اپنے کسی مخصوص بندے کی تخلیق کرتا ہے تو اس کے لیے ایک ایسی زمین بھی ہموار کرتا ہے جس میں دنیا کی بہترین فصل پیدا ہو سکے۔ ایک نوجوان جو اپنے عہد و شباب میں پرہیزگاری کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز تھا، غوث اعظم اسی مرد پاک باز کے فرزند تھے، ایسے فرزند کہ جس پر ماں باپ ہی نہیں سارا عالم اسلام ناز کرتا تھا، اور یہ سلسلہ ناز ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ 850 سال گزر جانے کے باوجود اس مجلس ادب میں گناہگاروں کا تو ذکر ہی کیا، ہر دور کا بڑے سے بڑا ولی بھی خوف سے لرستا ہوا داخل ہوتا ہے۔ غوث اعظم صحیح نسب سید تھے، والد محترم کی طرف سے 12ویں پشت میں آپ کا سلسلہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتا ہے۔ آپ کا خاندانی نام محمد عبد القادر اور لقب محی الدین یعنی مذہب کو زندہ کرنے والا تھا۔ آپ کی ولادت 470 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا آبائی وطن ایران کا ایک قدیم قصبہ جیلان ہے۔ آپ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے۔ اسی رات آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب کرام اور اولیاء اعظام کے ساتھ تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں، اے ابو صالح، تجھے اللہ تعالیٰ نے فرزند صالح عطا فرمایا ہے، وہ میرے بیٹے کی مانند ہے اور اولیاء میں اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ کی پیدائش کی رات ایک اور عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ معتبر مورخین نے لکھا ہے کہ اس رات پورے شہر میں جس قدر بچے پیدا ہوئے وہ سب کے سب لڑکے تھے، پھر وہ تمام لڑکے جوان ہو کر ولایت کی منزل تک پہنچے۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ عبد القادر رمضان المبارک میں پیدا ہوئے اور انہوں نے پورے مہینے دن کے وقت دودھ نہیں پیا۔ دوسرے سال گہرے بادل ہونے کی وجہ سے رمضان کا چاند نظر نہیں آ سکا اور لوگ شبہے میں پڑ گئے۔ آخر قرب و جوار کی چند لوگوں نے حضرت شیخ عبد القادر کی والدہ ماجدہ سے دریافت کیا، سیدہ کیا تمہیں رویت الحال کی کوئی خبر ملی ہے؟ جواب میں سیدہ نے فرمایا، آج میرے عبد القادر نے خلاف عادت دن کے وقت دودھ نہیں پیا ہے، اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ آج پہلا روزہ ہے۔ کچھ دن بعد معتبر شہادتوں سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ دوسرے شہروں میں رمضان کا چاند نظر آ گیا تھا، اور پھر یہ بات دور دراز کے علاقوں میں بھی مشہور ہو گئی کہ سادات عجم میں ایک مبارک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ خود حضرت غوث اعظم نے بھی اپنے ایک شعر میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، میرے ابتدائی حالات کے ذکر سے تمام عالم بھرا ہوا ہے اور میرا گہوارے میں روزہ رکھنا مشہور ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر نے ابھی ہوش نہیں سنبھالا تھا کہ اچانک آپ کے والد محترم بیمار ہوئے اور دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ اکثر اولیاء اکرام کی زندگی میں یہ قدر مشترک پائی جاتی ہے کہ وہ عہد طفلی ہی میں سایہ پدری سے محروم ہو جاتے ہیں، اور پھر مادہ پرست لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان یتیم بچوں کی زیست کیسے بسر ہوگی اور دنیا میں کون ان کا پرسان حال ہوگا۔ مگر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب یہی بے سہارا بچے ساری دنیا کا مرکز نظر قرار پاتے ہیں اور بڑے بڑے شاہان وقت ان کے آستانے پر کاسہ سوال لیے کھڑے رہتے ہیں۔ قدرت کسی رسم خاص کے مطابق حضرت شیخ عبد القادر بھی بچپن میں ہی یتیم ہوئے، لیکن ابھی آپ کے نانا حیات تھے۔ حضرت سید عبداللہ نے آپ کو اپنی آغوش محبت میں لے لیا اور محبوب نواسے کی تعلیم و تربیت جاری رکھی۔ حضرت شیخ عبد القادر کا عہد طفلی دوسرے بچوں سے یکسر مختلف تھا۔ آپ کو دوسرے بچوں کے کھیلوں اور مشغلوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، پھر بھی اگر کبھی بشری تقاضوں سے مجبور ہو کر دوسرے بچوں کی طرف متوجہ ہوئے تو ایک غیبی صدا آپ کا تعاقب کرتی، اے برکت دیے ہوئے میری طرف آ۔ یہ آواز سن کر حضرت شیخ عبد القادر خوفزدہ ہو جاتے اور بھاگ کر اپنے مادری گرامی کی آغوش میں چھپ جاتے۔ کسی معتبر تاریخ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ حضرت شیخ عبد القادر کی تعلیم کا آغاز کب ہوا، پھر بھی ایک مستند روایت میں موجود ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ 10 برس کی عمر میں حصول علم کی غرض سے مکتب تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس روایت کی بنیاد ایک مشہور واقعہ ہے۔ ایک بار حضرت شیخ عبد القادر سے پوچھا گیا، آپ کو اپنے ولی ہونے کا علم کب ہوا؟ جواب میں حضرت شیخ نے فرمایا، جب میں 10 برس کا تھا تو اپنے شہر کے مکتب میں پڑھنے جایا کرتا تھا۔ راستے میں مردان غیب میرے پیچھے پیچھے چلتے دکھائی دیتے تھے، پھر جیسے ہی میں مدرسے میں داخل ہوتا تو مردان غیب کو بار بار کہتے ہوئے سنتا، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو۔ 18 سال کی عمر میں والدہ محترمہ نے ایک قافلے کے ساتھ آپ کو مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد بھیجا۔ قافلہ ایک سنسان راستے سے گزرا تو اس علاقے کے ڈاکوؤں نے تمام مسافروں کا ساز و سامان لوٹ لیا اور شیخ عبد القادر کو کسی غریب آدمی کا بچہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ جب یہ لوٹا ہوا قافلہ آگے بڑھنے لگا تو رہزنوں کے سردار نے آپ سے ازراہ مذاق پوچھا، بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ ہاں، غوث اعظم نے لوٹیروں کی توقع کے خلاف جواب دیا۔ آخر سردار کے اشارے پہ غوث اعظم کی جامع تلاشی لی گئی، مگر رہزنوں کو کچھ نہیں ملا۔ ہمیں بیوقوف بناتا ہے، ڈاکوں کا سردار ایک بچے کی بات کو مذاق سمجھ کر جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ مذاق کیا ہوتا ہے، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں جو قبا کے دبیز استر میں بغل کے نیچے ٹاکی گئی ہیں، حضرت شیخ نے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ سردار کے کہنے پر دوبارہ جمع تلاشی لی گئی، آخر اس کے ساتھی اشرفیاں پانے میں کامیاب ہو گئے۔ تمام رہزنوں کو اس بات پر حیرت تھی کہ اگر لڑکا ان اشرفیوں کی نشاندہی نہ کرتا تو وہ اس طرف متوجہ بھی نہ ہوتے۔ لڑکے کی صاف گوئی پر سردار کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ تعجب ہوا تھا، اس لیے وہ حضرت شیخ عبد القادر سے یہ سوال کیے بغیر نہ رہ سکا۔ لڑکے، تو جھوٹ بول کر اپنی اشرفیوں کو چھپا سکتا تھا، پھر تو نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ رخصت کرتے وقت میری مادری گرامی نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ اگر جان پر بھی بن جائے تو جھوٹ نہ بولنا۔ یہی میری والدہ کا حکم تھا، اگر تم مجھے قتل بھی کر دیتے تو میں اس حکم کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر نے اس قدر جرت بے باکی کے ساتھ فرمایا کہ تمام رہزن دم بخود رہ گئے۔ कजाकों के सरदार पर सख्ता तारी था। फिर अचानक इसके साथियों ने इसे रोते हुए देखा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि चंद लफ्जों की हरारत से पत्थर भी पिघल जाएगा। अजीब इनकलाबी लम्हात थे। जिस शख्स के लिए कत्लो गारत एक खेल था, उसकी आंखें अश्क बरसा रही थी। सरदार, यह आपको क्या हो गया है? साथी लुटेरों ने पूछा। अफसोस, मैं हलाक हो गया। इस लड़की को अपनी माँ से किए हुए अहद का इस कदर पास है, और मैं अपने इस अहद को दिन में कई बार तोड़ देता हूँ जो मैंने खालिक कायनात से किया है। ये कहकर सरदार ने टूटा हुआ माल तमाम मुसाफिरों को वापस कर दिया और हजरत शेख अब्दुल कादिर के हाथों को भी इख्तियार चूम लिया। तू अजीम है कि मुझ जैसे पस्ती में गिरे हुए इंसान से मिला। तू मेरा रहनुमा है कि तूने मुझे सच्चाई का रास्ता दिखाया। तू हक की रोशनी है कि अगर आज की रात तुझसे मुलाकात ना होती तो मैं जिंदगी भर गुनाहों के अंधेरे में भटकता रहता। फिर कज़ाकों के सरदार पर नाकाबिले बयान वहशत तारी हो गई और रात के सन्नाटे में चीखता हुआ कहीं गुम हो गया। ए दुनिया, मेरा पीछा छोड़ दे, मैं तुझ पर लानत भेजता हूँ। ये गौसे आजम की पहली करामत थी जिसने एक रहजन की जिंदगी का नक्शा बदल दिया। हजरत गौसे आजम फितरतन नहायत रकीकुल कल्ब और फयाज इंसान थे। आपसे लोगों की तकलीफ देखी नहीं जाती थी। नतीजतन बगदाद पहुंचते पहुंचते आपने तमाम अशर्फियां जरूरतमंदों पर सर्फ कर दी और खुद फाका कशी में मुबतला हो गए। एक मौके पर आपने फरमाया, जब मैं पहले पहल बगदाद में दाखिल हुआ तो वहां 3 दिन तक मुझे खाने के लिए कोई चीज नहीं मिली। आखिर मैं तंग आकर ईवान कसरा की तरफ निकल गया। ये वही ऐवान है जिसके 14 कंगरे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त गिर गए थे। वहां पहुंचकर अंदाजा हुआ कि मुझसे भी ज्यादा जरूरतमंद लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। मैंने देखा कि ईवान कसरा में तकरीबन 70 औलिया अपने शुक्म की आग बुझाने के लिए जायज और हलाल चीजें तलाश कर रहे थे। इसलिए मैंने सोचा कि इन बुजुर्गों के रास्ते में रुकावट डालना मुरव्वत के खिलाफ है। मजबूरन बगदाद की तरफ लौट आया। रास्ते में मुझे एक अजनबी शख्स मिला। इसने बताया कि वो मेरे शहर जिलान का रहने वाला है। गरचे मैं इससे वाकिफ नहीं था, लेकिन फिर भी एक अजीब सी खुशी का एहसास हुआ। कुछ देर बाद उस शख्स ने सोने का एक छोटा सा टुकड़ा मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारी वालदा मोहतरमा ने भेजा है। मैंने सोने के टुकड़े से खाने पीने की कुछ अशियां खरीदी और दोबारा ईवान कसरा पहुंचकर वो सारी चीजें दरवेशों के सामने रख दी। ये क्या है? इनफाका सदा मगर गैरतमंद दरवेशों ने मुझसे पूछा। मैंने सारा माजरा बयान करते हुए कहा, मुझे गवारा नहीं हुआ कि मैं तो पेट भर कर रोटी खाऊं और आप जैसे साहिबान कमाल भूखे रह जाएं। इसे कबूल फरमा लीजिए ताकि मुझे सुकून कल्ब हासिल हो। दरवेशों ने मेरी इस नजर को कबूल कर लिया और मैं इनकी दुआओं के साए बगदाद की तरफ लौट आया। मेरे पास कुछ रकम बाकी थी, मैंने इससे कुछ और खाना खरीदा। फिर फकरा को आवाज दी, आओ मेरे भाइयों, रज़्ज़ाक आलम ने गैब से हमारे लिए सामान रिस्क फराहम कर दिया है। मेरी आवाज सुनते ही वो दरवेश जमा हो गए जो फाका कशी की शिद्दत से जहाँ बलब हो रहे थे। फिर हम सब ने सैर होकर खाना खाया और दूसरे वक्त के लिए एक लुकमा भी बचाकर नहीं रखा। खुदा खुद मीर सामा अस्त अरबाब तवक्कुल रा। हजरत शेख अब्दुल्ला सलमी की रिवायत है कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाया करते थे कि एक बार मुझे कई दिन तक खाना नहीं मिला। इत्तेफाक से एक रोज मैं मोहल्ले कतिया शरीफिया में चला गया। सरेरा मुझे एक शख्स मिला और उसने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, किसी बावर्ची की दुकान पर चले जाओ और मेरा यह खत दिखाकर अपने खाने के लिए पसंदीदा चीजें खरीद लो। मैंने हैरत से उस शख्स की तरफ देखा और खत ले लिया। फिर वो अजनबी मुझे नजर नहीं आया। मैं दिल ही दिल में ताज्जुब का इजहार करते हुए बावर्ची की दुकान पर पहुंचा और इस अजनबी शख्स का लिफाफा आगे बढ़ा दिया। बावर्ची ने मेरे हाथ से खत लेकर रख लिया और मुझसे पूछा, लड़के तुम्हें क्या दरकार है? मैंने मैदे की चंद रोटियां और खबीस यानी एक खास किस्म का हलवा तलब किया। बावर्ची ने किसी पसोपेश के बगैर वो चीजें मेरे हवाले कर दी। मुझे बावर्ची के तर्ज अमल पर बड़ी हैरत हुई थी कि आखिर मैं इससे ये पूछे बगैर नहीं रह सका। तुमने इस खत को खोल कर भी नहीं देखा और मतलूबाशियां मेरे सुपुर्द कर दी, ये क्या राज है? बावर्ची ने मुस्कुराते हुए एक नजर मुझे देखा, लड़के तुम अपने काम से काम रखो। ये कहकर वो दूसरे ग्राहकों की तरफ मुतवज्जह हो गया। मैं खाना लेकर उस सुनसान मस्जिद में चला गया जहां बैठकर अपना सबक दोहराया करता था। खाना मैंने अपने सामने रख लिया
अभी ये सोच ही रहा था कि इसे खाऊं या ना खाऊं कि अचानक मेरी नजर एक और लिफाफे पर पड़ी। ये लिफाफा मस्जिद की दीवार के साए में जमीन पर पड़ा था। मैंने वो लिफाफा उठा लिया और उसे खोल कर पढ़ने लगा। अल्लाह के शेरों को लज्जतों और ख्वाहिशों से क्या गर्ज? ये लज्जतें तो जयीफ और कमजोर लोगों के लिए हैं। ये तहरीर पढ़ते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और पूरा जिस्म खौफ और दहशत से कांपने लगा। मैंने फौरन ही अपना रुमाल उठा लिया और खाने की चीजें वहीं छोड़ दी। फिर मस्जिद के एक गोशे में दो रकत नमाज अदा की और वहां से चला आया। शेख अबू बकर तमैमी का बयान है, हजरत गौसे आजम फरमाते थे, एक बार बगदाद में कहत पड़ा जिसकी वजह से मुझे कई रोज तक खाना मयसर नहीं आया। मैं गिरी पड़ी चीजें तलाश करके खा लेता था। एक दिन भूख की शिद्दत इतनी बढ़ी कि मैं दरियाए दजला की तरफ चला गया ताकि काहू के पत्ते या कोई और सब्जी खाकर इस कड़े वक्त को गुजार सकूं। मगर जहां भी जाता वहां पहले से सैकड़ों अफराद मौजूद होते। अगर कोई चीज मिलती भी तो इस पर जरूरतमंदों का हुजूम होता। मुझे ये बात पसंद नहीं थी कि खाने के एक लुकमे के लिए दूसरे भूखों से मजाहमत करूं। आखिर मजबूर होकर शहर की तरफ वापस लौट आया, लेकिन यहाँ भी मुझे कोई गिरी पड़ी चीज दस्तियाब ना हो सकी। गर्ज भूख की शिद्दत मुझे कूचा कूचा पिराती रही, यहाँ तक कि मैं एक मस्जिद के करीब पहुंच गया। जोफ नातवानी के सबब तेज चक्कर आ रहे थे, कभी आंखों के सामने अंधेरा फैल जाता और यूं महसूस होता जैसे मैं जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाऊंगा। आखिर बड़ी मुश्किल से मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ और एक गोशे में जाकर बैठ गया। इसी दौरान एक अजमी नौजवान मस्जिद में नान और भुना हुआ गोश्त लेकर आया और मुझसे कुछ फासले पर बैठकर खाने लगा। भूख की वजह से मेरी यह हालत थी कि जब वो नौजवान खाने के लिए लुकमा उठाता तो बेख्तियार मैं अपना मुंह खोल देता। जब कई बार मुझसे ये इस्तिरारी अमल सरजद हुआ तो मैं अपने आप को मलामत करने लगा, ऐ मेरे नफ्स, ये बेसब्री तुझे अहले दुनिया के सामने रुसवा कर देगी। आखिर तवक्कुल और कनाद भी तो कोई शय है, तू इस रास्ते को इख्तियार क्यों नहीं करता? इतने में अचानक इस अजमी नौजवान की नजर मुझ पर पड़ी। इसने बड़ी मोहब्बत से कहा, आइए भाई बिस्मिल्लाह। मैंने इनकार किया मगर वो मुसलसल इसरार करता रहा। कुछ इसकी तवाजा का असर था और कुछ मेरी मजबूरी। आखिर मैं अजमी नौजवान के साथ खाने में शरीक हो गया। अभी मैंने चंद लुकमे ही लिए थे कि वो नौजवान मुझसे मेरे हालात दरियाफ्त करने लगा। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्या मशगला है? मैंने इसे बताया कि जिलान का रहने वाला हूँ और इल्मे फिका हासिल करने की गर्ज से बगदाद आया हूँ। मेरा ताल्लुक भी जिलान से, इसने मुसर्रत आमेज लहजे में कहा। दियार गैर में अपने एक हमवतन को देख कर मुझे भी एक अजीब सी खुशी का एहसास हुआ। क्या आप जिलान के रहने वाले एक नौजवान अब्दुल कादिर को जानते हैं? उसने लुकमा तोड़ते हुए कहा। मेरा ही नाम अब्दुल कादिर है, मैंने अजबी नौजवान के सवाल का जवाब देते हुए कहा। मेरी बात सुनते ही इसके हाथ से खाने का लुकमा छूट कर जमीन पर गिर पड़ा और चेहरे का रंग मुतगैर हो गया। अभी मैं इसकी बदलती हुई कैफियत पर हैरान ही हो रहा था कि नौजवान की आंखों से आंसू बहने लगे। अपने हमवतन की ये बिगड़ी हुई हालत देखकर मैंने भी खाना छोड़ दिया। वो नौजवान बहुत देर तक सुकूत के आलम में बैठा रहा और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। तुमने खाना क्यों छोड़ दिया, खैरियत तो है? मैंने मुस्तरिफ होकर नौजवान से पूछा। अब ये रोटी मेरे हलक से नहीं उतर सकती, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। शदीद दिक्कत के सबब नौजवान को गुफ्तगु करने में दुश्वारी पेश आ रही थी। तुम किस जुर्म की बात कर रहे हो, मुझे भी तो कुछ बताओ। नौजवान के बहते हुए आंसुओं ने मेरे अंदर भी इस्तराबी कैफियत पैदा कर दी थी। मेरे भाई यकीन करो, मैं तुम्हें बहुत दिनों से तलाश कर रहा हूँ, नौजवान ने रोते हुए कहा। जब मैं बगदाद आया था तो मेरा जाती खर्च भी मौजूद था, मगर तुम्हारी जस्तूजू ने इतना तूल खींचा कि सारी रकम सर्फ हो गई। 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया था, मजबूरन आपकी अमानत में से कुछ रकम लेकर ये चीजें खरीदी और पेट की आग बुझाने बैठ गया। खुदा का शुक्र है कि आपसे मुलाकात हो गई, ये आप ही का खाना है। मैं हैरत से अजमी नौजवान की तरफ देखने लगा। कैसी अमानत, मैं तुम्हारी बात का मफहूम नहीं समझा। जब मैं जिलान से रुखसत हो रहा था तो आपकी वालदा मोहतरमा ने मुझे 8 दिनार देते हुए फरमाया था, ये रकम मेरे बेटे अब्दुल कादिर तक पहुंचा देना, नौजवान ने अमानत की वजाहत करते हुए कहा। मगर अफसोस, मैं इस रास्ते पर साबित कदम ना रह सका। 3 दिन के पाका कशी ने मुझे खयानत पर मजबूर कर दिया, ये कहकर नौजवान हिचकियों से रोने लगा। अल्लाह मेरे इस गुनाह को माफ फरमाए। मैं बहुत देर तक इसे तसल्लियां देता रहा। फिर जब इस नौजवान की हालत संभली तो हम दोनों ने बाकी खाना खाया और रज़ाक़े आलम का शुक्र अदा किया। रुख्सत होते वक्त मैंने 4 दिनार उसे दे दिए कि वो मेरी ही तरह गरीब उल्वतन भी था और मजबूर भी। इसी तरह शेख अबू मोहम्मद अब्दुल्ला जियाई का बयान है कि हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी ने फरमाया, एक दिन मैं किसी वीरान मुकाम पर बैठा अपना सबक याद कर रहा था। कई वक्त की फाका कशी के सबब बार बार मेरी आंखें धुंधली हुई जाती थी और सर चकराने लगता था। नागहां एक सदाए गैबी सुनाई थी, अब्दुल कादिर कब तक भूखा रहेगा, जा किसी से कर्ज ले ले ताकि तुझे इल्म हासिल करने में दुश्वारी पेश ना आए। मैं अपने वतन से बहुत दूर हूँ, यहाँ मेरा कोई शनासा नहीं, फिर मुझे कौन कर्ज देगा, मैंने इस गैबी आवाज के जवाब में कहा। जिसने तुझे इस वीराने में पुकारा है वही तेरे कर्ज की अदायगी का जिम्मेदार है, इत्मीनान से अपना काम कर। दूसरी बार सदाए गैबी सुनकर मैं एक नानबाई के पास पहुंचा और उससे कहा, भाई मुझे रोजाना 1.5 रोटी कर्ज दे दिया करो, इस शर्त पर कि मुझे कहीं से कुछ रकम मिल गई तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज अदा कर दूंगा, और अगर इस दौरान मर जाऊं तो मुझे माफ कर देना। मेरी बात सुनकर नानबाई रोने लगा, आपका जितना जी चाहे मेरी दुकान से ले जाया करें। फिर मैं नानबाई की दुकान से रोजाना 1.5 रोटी ले आता। आखिर जब मुझे इस तरह कर्ज की रोटी खाते हुए मुद्दत गुजर गई तो एक दिन बड़ी शिद्दत से ख्याल आया, अब्दुल कादिर तू कब से कर्ज लिए जा रहा है, मगर अदायगी की कोई सूरत नहीं। इस ख्याल से मुझे बड़ी शर्म आई और मैं उस रोज नानबाई की दुकान पर नहीं गया। दूसरे दिन मुझे फिर वही सदाए गैबी सुनाई थी, जब हमने तुम्हारे कर्ज की अदायगी का जिम्मा ले लिया था तो फिर इतना परेशान होने की क्या जरूरत थी, नानबाई के सामने बारे निदामत से मेरा सर नहीं उठता। अब मैं इसके पास नहीं जाऊंगा, मगर कर्ज अदा करने तो जाना ही पड़ेगा, गैबी आवाज ने मुझे मुखातिब किया। कर्ज कहाँ से अदा होगा, मैंने हैरान होकर कहा, जमीन और आसमान में सारे खजाने अल्लाह के हैं और वही तुम्हारा कर्ज अदा करेगा। फला मुकाम पर चले जाओ और वहां तुम्हें जो कुछ मिले उससे नानबाई का सारा हिसाब बेबाक कर दो। आखिर मैं हैरत में डूबा हुआ इस निदान मुकाम पर पहुंचा जिसकी तरफ सदाए गैबी ने इशारा किया था। कुदरत ने एक बार फिर मेरी दस्तगीरी फरमाई थी। वहां जमीन पर सोने का एक चमकता हुआ टुकड़ा इस तरह पड़ा था जैसे वो मेरा ही इंतजार कर रहा हो। मैंने इस टुकड़े को उठा लिया और फिर नानबाई के हवाले कर दिया। नानबाई ने मोहब्बत से मुस्कुराते हुए कहा, मियाँ इतनी क्या जल्दी थी। शेख अबू मोहम्मद अब्दुल्ला जियाई की रिवायत है, हजरत गौसे आजम ने फरमाया, अहले बगदाद की एक जमात इल्मे फिका में मशगूल थी। जब अनाज कटने के दिन आते तो तालबिल्मों की ये जमात याकूबा नाम के एक गांव में चली जाती और मुकामी बाशिंदे इल्म की सरपरस्ती के तौर पर इस जमात को कुछ गल्ला दे देते थे। एक बार इन लोगों ने मुझे भी अनाज हासिल करने की तरगीब दी। मैं इस वक्त कम उम्र था इसलिए इनके साथ चला गया। इस गांव में एक नहायत आबिद और जाहिद बुजुर्ग शरीफ याकूबी रहते थे। मुझे उनकी ज्यारत का शौक हुआ और मैं सारे काम छोड़कर बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हो गया। जब मैं वहां पहुंचा तो बहुत से लोग शेख के हलके में मौजूद थे। मैं भी खामोशी से एक कोशे में बैठ गया। शेख शरीफ याकूबी मुख्तलिफ मौजूदात पर गुफ्तगु करते रहे। बज़ाहिर वो सीधी सादी बात कहते मगर हर शख्स अपनी इल्मियत और ज़हनी सलाहियत के मुताबिक मफहूम अखज करता। यही शेख की तकरीर का कमाल था। आखिर मजलिस खत्म हुई और तमाम लोग अपने अपने घरों को चले गए, मगर मैं शेख के सामने खड़ा रहा। नौजवान, क्या कोई सवाल बाकी रह गया है, शेख ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और फिर फरमाया, बैठ जाओ। मैंने शेख के हुक्म पर अमल किया। अब कहो क्या चाहते हो, मैंने आपकी तकरीर सुनी मगर वो तमाम अहले मजलिस के लिए थी, मेरी ख्वाहिश है कि शेख मुझे कोई खास नसीहत फरमाए। शेख शरीफ याकूबी ने बहुत गौर से मेरी तरफ देखा, फिर नहायत पुरजलाल लहजे में फरमाया, तालिबान हक किसी गैर के आगे हाथ नहीं फैलाते। ये सुनकर मेरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। मुझे यूं महसूस हुआ कि जैसे शेख की रोशन आंखों पर इस गांव में मेरे आने का मकसद जाहिर हो गया। शरीफ याकूबी की नसीहत के बाद ना मैं किसी मुकाम पर गया और ना मैंने किसी से सवाल किया। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि मैं अपने तालबिल्मी के जमाने में असाज़ा से सबक लेकर जंगल की तरफ निकल जाता था, फिर बयाबानों और खराबों में दिन हो या रात, आंधी हो या मूसलाधार बारिश, गर्मी हो या सर्दी, अपना मुताला जारी रखता था। इस वक्त मैं अपने सर पर एक छोटा सा अमामा बांधता और मामूली कपड़े का जुब्बा पहनता था। कई कई दिन फाके से गुजर जाते, फिर दरियाए दजला के किनारे उगने वाली तरकारियां खाकर शुकुम की आग सर्द करता। कभी कभी ये तरकारियां भी हाथ ना आती, क्योंकि भूख के मारे हुए दूसरे फुकरा भी इधर का रुख कर लिया करते थे। ऐसे मौकों पर मुझे शर्म आती थी कि मैं दरवेशों की हकदल्फी करूं, मजबूरन वहां से चला जाता और अपना मुताला जारी रखता। फिर नींद आती तो खाली पेट ही कंकरियों से भरी हुई जमीन पर सो जाता। हजरत गौसे आजम अपने इसी जमाने तालिब इल्मी के बारे में फरमाते हैं, मैं जमाने की जिन सख्तियों से दोचार हुआ उन्हें बर्दाश्त करते करते पहाड़ भी फट जाता। ये तो जात बेनियाज का काम है कि मैं बाआफियत इन खारदारों से गुजर गया। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने जिलहज 1496 हिजरी में इल्म किरत, इल्म तफसीर, इल्म हदीस, इल्म फिका, इल्म कलाम, इल्म नात, इल्म अदब, इल्म नहु, इल्म उरूज, इल्म मनाजरा, इल्म तारीख और इल्म इंसाफ की तकमील की। इस वक्त आपकी उम्र 26 साल थी। ये भी हजरत गौसे आजम की एक जिंदा करामत है, अगर लोग इसे समझने की कोशिश करें। फिर जब आपने फतवा देना शुरू किया तो लुमाए जाहिर की सफों में हलचल सी मच गई। 26 साल नौजवान इल्मी शरीयत की गहराइयों को नहीं समझ सकता, एक दुनियादार बूढ़े आलम ने कहा। उन्हें हजरत शेख अब्दुल कादिर की नौजवानी से शिकायत थी, वो इल्म को उम्र की ज्यादती से मशरूत करना चाहते थे। फिर इन दुनियादार उलमा ने हजरत गौसे आजम के खिलाफ एक महाज बना लिया। शरी मसाइल का हल पेश करना कारे तुफला नहीं है। अब्दुल कादिर ने फतवा देने का इजाजत नामा किससे हासिल किया? जब अकीदतमंदों ने हजरत गौसे आजम से ये सवाल किया तो आपने फरमाया, मेरे असाज़ा मेरे इल्म से मुतमईन है और इनका इत्मीनान ही मेरा इजाजत नामा है। हजरत शेख अब्दुल कादिर के तमाम असाज़ा दरवेश और गोशानशी थे। इन्हें दरबार खिलाफत में तकरुब हासिल नहीं था, इसलिए दुनियादार उलमा इन फकरा की इल्मी हैसियत को तस्लीम करने पर आमादा नहीं थे। फिर नहायत जोर शोर से हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई। ये नौजवान इस वक्त तक फतवा देने का अहल नहीं जब तक वह बगदाद के नामवर उलमा से इजाजत नामा हासिल ना कर ले। इजाजत नामा हासिल करने की एक ही शर्त थी कि हजरत शेख अब्दुल कादिर इन उलमा के सामने पेश होकर इम्तिहान के मरहले से गुजरे। हजरत गौसे आजम पहले ही वीरानों जंगलों में रहना पसंद करते थे। उलमा जाहिदी का ये अंदाज देखा तो आपका दिल मजीद उचाट हो गया। आप बगदाद छोड़कर दोबारा इन्हीं बयाबानों में वापस चले जाना चाहते थे, मगर बाद अकीदतमंदों ने अर्ज किया, लोग आपके इस तर्ज अमल को बहाना बना लेंगे, मुझे अल्लाह के रास्ते में किसी की परवाह नहीं है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, अहले दुनिया जो चाहे करें। अकीदतमंदों का इसरार बढ़ता रहा। आखिर गौसे आजम उलमाए बगदाद के सामने एक तालिब इल्म की हैसियत से हाजिर होने और इम्तिहान के मरहले से गुजरने के लिए तैयार हो गए। उलमाए ज़ाहिरी मसरूर और मुतमईन थे कि नौजवान ने इनके जलाल और जबरूत के सामने सर झुका दिया था, और हजरत गौसे आजम के अकीदतमंद परेशान मुस्तरिब थे कि कहीं उन्हें उलमाए बगदाद के सामने खिफत और शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। आखिर इम्तिहान के साथ आ पहुंची। तमाम उलमाए बगदाद, जिन्हें हजरत शेख अब्दुल कादिर के फतवा देने पर इतराज था, एक बड़ी इमारत में जमा हुए। बेहतरीन लिबास देव तन किए, सरों पर अमामे सजाए, पेशानियों पर नमूद व नुमाइश की लकीरें और आंखों में इल्म आगही का खुमार। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी एक मामूली कपड़े का जुब्बा पहने कमरे में दाखिल हुए। बुलंद आवाज में हाजरीन को सलाम किया और नजरे झुकाए अपनी नशिस्त पर बैठ गए। हजरत गौसे आजम की नशिस्त ऐन उलमाए बगदाद के सामने थी। दुनियादार उलमा ने बहुत गौर से हजरत शेख अब्दुल कादिर की शख्सियत का जायजा लिया। फिर उन्हें यकीन आ गया कि ये नौजवान इल्म के समंदर की गहराइयों से वाकिफ नहीं हो सकता। कुछ देर तक मजलिस पर गहरा सुकूत तारी रहा। फिर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिनानी ने झुकी हुई नजरें उठाई और बहुत नरम लहजे में फरमाया, हजरात मैं इस काबिल तो नहीं हूँ कि किसी इम्तिहान से गुजर सकूँ, मगर जब रस्म दुनिया यही ठहरी तो फिर बिस्मिल्ला। ये कहकर हजरत गौसे आजम ने इम्तिहान लेने वाले उलमा को बहुत गौर से देखा। कैसेट नंबर 11 यहाँ खत्म होती है। बकिया किताब अब आप कैसेट नंबर 12 में सुनिए।